Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. समाधान बीके सूरज भाई के साथ।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। समाधान कार्यक्रम में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। कल चर्चा हो रही थी परमात्मा को, भगवान को अपना साथी बनाने की, और हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। सचमुच जिसका खेवैया परमात्मा बन जाए उसका जीवन कितना सरल, कितना सहज और कितना आनंददायी हो सकता है। जिस प्रकार घर का मुखिया यदि बहुत शक्तिशाली होता है तो परिवार के अन्य सदस्य बहुत निश्चिंत होते हैं, वैसे ही यदि हम उन्हें अपने जीवन की नैया दे देते हैं, उन्हें अपना साथी बना लेते हैं, तब तो समस्याएं हमारे जीवन में रहेंगी ही नहीं, और यदि आएंगी भी तो हमें वो खेल की तरह लगेंगी और हम जीवन का संपूर्ण आनंद ले पाएंगे। तो कल सत्संग की बात हो रही थी, संग की बात हो रही थी, और हम यहाँ आके रुके थे कि कैसे उन्हें अपना साथी बनाएं। प्रता जी से आज हम वहीं से शुरुआत करेंगे कि उनके क्या अनुभव हैं परमात्मा के संग के, खुदा दोस्त के, और साथ ही हम भी कैसे उन्हें सहज रूप से अपने जीवन में दोस्त के रूप में शामिल कर सकते हैं वो भी जानेंगे। आइए उनका अभिनंदन करते हैं। प्रता जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।
शुक्रिया।
हमारे सभी दर्शक मुझे लगता है इंतजार कर रहे होंगे कल से कि कब प्रता जी पुनः आए और हमें खुदा दोस्त के सुंदर अनुभव सुनाएं और ये भी बताएं कि हम कैसे उन्हें अपना दोस्त बनाएं।
हमारे वहाँ वो गोरखपुर गीता प्रेस वालों की श्री कृष्ण की चित्रों सहित वो मैगजीन आती रहती थी।
जी जी।
तो संकल्प उठता था कि ये गोप गोपियाँ श्री कृष्ण के साथ, ओह हम नहीं थे क्या, हम भी होते तो कितना अच्छा होता। फिर बहुत सुंदर दोस्ती की कहानियाँ श्री कृष्ण और अर्जुन कि बस श्री कृष्ण को अर्जुन से प्यार हुआ। देखिए, अगर कहानियों पे हम ध्यान दें, श्री कृष्ण को वहीं घर बैठे जब उसने कंस वध कर लिया और सब खेल बिल्कुल नॉर्मल हो गया, तब उसे ख्याल आया कि मेरी बुआ के पुत्र पांचों कष्ट में हैं। उन्हें अपना दूत भेजा और उनका हालचाल पूछा, और सचमुच से पता चल गया कि वो कष्ट में हैं। मिलन हुआ, पहला मिलन श्री कृष्ण का पांचों पांडवों से, और उनको विशेष प्यार रहा अर्जुन के साथ। लगा दोनों की लंबाई चौड़ाई, रंग ऊंचाई, विचार शक्ति सब एक सी है, प्यार हो गया। तो हम भी सोचता रहा कि भगवान से अर्जुन की दोस्ती, और फिर सारी महाभारत और सारा उनका विवरण ये दर्शाता है कि उस दोस्ती के कारण अर्जुन सुरक्षित है, उस दोस्ती में भगवान की गाइडेंस अर्जुन को मिल रही है, और उस दोस्ती के कारण ही उनकी विजय हुई है। तो मैं भी सोचता था काश कैसे हो ये, पर ना हम अर्जुन हैं ना उसके साथ हैं, वो तो काल ही बीत गया, फिर कैसे हो। लेकिन ऐसा समय सौभाग्य से हमारे सामने भी आ गया कि भगवान इस धरा पर, और हमें उसका संदेश मिला और हम उसके पास आ गए। और जब मैं पहली बार आया तो मेरी ये दृढ़ इच्छा थी इन्हीं के साथ रहूं, और कुछ ही मास में वो शिव बाबा ने मेरी इच्छा पूर्ण कर दी। मुझे बहुत अच्छी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करने की एक अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पर आकर, और 82 से एक दिन की घटना है बस, एक सुंदर सी थी तो निगेटिव, लेकिन मेरे लिए बहुत सुंदर बन गई कि मैं अकेला घूम रहा था नक्की के चारों ओर, मन थोड़ा सा खुश नहीं था, कहूँ थोड़ा उदास था, कुछ बात हुई थी, छोटे थे हम, किसी ने कुछ कह दिया था, मन में वो चल रहा था। मैं सोचा, जैसी चर्चा हम कल कर रहे थे कि मेरे भी ऐसे दोस्त तो नहीं हैं जिनको हम अपना सब कुछ सुना दें, मैं सोचा कि मेरा भी कोई अच्छा दोस्त होता तो मैं भी मन की सारी बातें शेयर करके आज हल्का तो हो जाता कम से कम। तुरंत ऊपर से ठक 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 आवाज जैसे आने लगी, जैसे मैं सुन रहा हूँ, मैं हूं ना तुम्हारा खुदा दोस्त, सुनाओ मुझे। और जैसे मेरा तीसरा नेत्र खुला, मैं जगा हूं कि तुम मनुष्य दोस्तों की बात कर रहे हो, उनकी तलाश कर रहे हो, भगवान तुम्हारा दोस्त। बस मैंने बाबा कहा, बाबा थोड़ी आज ये मन उदास हो गया है मेरा, ये बात हो गई है, पता नहीं क्या हुआ, और बस ये बताते ही मन फ्रेश और आनंदित। वहां से मुझे लगा कि भगवान दोस्त, और मुझे भी ऐसा लगा कि भगवान मुझसे दोस्ती करना चाहता है। ये अपने में एक वंडरफुल बात थी कि क्योंकि हम तो उसे जानते ही नहीं थे कि वो भी इस तरह कोई दोस्त बनता है। और फिर उसी साल, ये बात 1982 की है, दो मुरलियां चली, यानी दो बार बाबा आए, और उन दोनों का जो टॉपिक था वो था खुदा दोस्त। और उससे मुझे बहुत अच्छी गाइडलाइन मिल गई कि भगवान से दोस्ती करनी है, वो दोस्ती निभाने के लिए तैयार है, लेकिन ये नहीं वही हमसे दोस्ती करे, हमें भी तो करना पड़ेगा। तो पहला विचार जो मेरे मन में आया था कि फ्रेंडशिप इज द मीटिंग ऑफ टू प्योर हार्ट, दो पवित्र दिलों का मिलन है दोस्ती। दोस्ती तभी एवरलास्टिंग होती है जब दोनों के दिल बिल्कुल साफ और पवित्र, यानी दो न होके एक हों। तो मुझे संकल्प हुआ कि वो है सुप्रीमली प्योर, एब्सोल्युटली प्योर, पवित्रता का सागर। तो अगर मुझे उससे दोस्ती करनी है तो मुझे भी सुप्रीमली प्योर होना ही पड़ेगा। दिल में और कुछ नहीं, कोई गंदगी नहीं, ये रबिश नहीं, क्लीन हार्ट, एक के प्यार में भरा हुआ दिल। मेरे पास ये चीज थी, ये जस्ट जागृत हो गई, और मैंने इन सब को बढ़ाया और शिव बाबा को अपना दोस्त स्वीकार कर लिया, यू आर माई सुप्रीम फ्रेंड। और फिर तो इस दोस्ती का दौर बहुत सुंदर चला। कृष्ण और अर्जुन की सारी कहानियां ज्ञात थी, मैं उनको बहुत रुचि से पढ़ता था, अभी पढ़ता रहता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है कि कैसे श्री कृष्ण के सामने अर्जुन अपने को समर्पित रखता है। अपनी बात तो कहता है, कुछ भी मन में दुविधा हो, कोई भी उसे गुस्सा आ रहा हो, वो बात तो कहेगा,
सब निकाल देते हैं।
श्री कृष्ण जब कुछ कहता है
स्वीकार कर लेते हैं।
सब कुछ समय, बस जो तुम कहते हो वही परम सत्य है। तो ये बातें मैंने बहुत सारी सीख ली, और पहला अनुभव मेरे पास बहुत सुंदर हुआ इसका। और फिर तो बहुत सारे अनुभव, विशेषकर बीमारियों में या साधनाओं के मार्ग में कहीं कठिनाई होती है, मैंने शिव बाबा को कह दिया था, यू आर माई गुड फ्रेंड, ट्रू फ्रेंड, जहाँ मैं गलती करूँ मेरे कान पकड़ लेना। तो इसके बहुत अच्छे अनुभव हुए। तो गलतियाँ तो होती हैं मनुष्य से, और हमसे भी होती थी। तो तुरंत बाबा की ओर से सिग्नल आता था, नो, तुम्हें ये नहीं करना है, जो और लोग कर रहे हैं वो तुम्हें नहीं करना है।
जी जी जी,
बहुत अच्छी एक चीज जी।
तो भ्रतर जी, एक चीज आपने जैसे कही कि मित्रता में दो पवित्र दिलों का मिलन होता है, लेकिन अभी यदि हम अपने दिल को देखते हैं या अपने जीवन को देखते हैं तो वैसी पवित्रता, वैसी शुद्धि हम नहीं पाते हैं, फिर हम उनसे कैसे अपनी समीपता बढ़ा सकते हैं?
बस ये इसका उत्तर यही है प्रश्न। तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि उस जैसी पवित्रता तो किसी किसी के पास ही हो सकती है। अब उसने पवित्र बनने का हमें मार्ग बताया है, हम उसकी आज्ञा पर चलकर उसके दिल को जीत लें। मुख्य बात ये है, प्योरिटी तो हमारी धीरे धीरे ही बढ़ेगी।
जी जी जी,
वो तो एक साथ बढ़ के परफेक्ट नहीं हो सकती, और ये बात तो सुप्रीम फ्रेंड को भी पता है। लेकिन जो जो वो हमें कहे, जिस तरह से वो हमें गाइडेंस दे, बस हम उसको फॉलो करते चले, हम उसके दिल को जीत लेंगे, तो फिर दोस्ती का दौर उसकी ओर से ज्यादा चलेगा, हम तो उसका आनंद लेंगे।
जी प्रताप जी, कई जैसे हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड होते हैं, कोई एक होता है तो हम उसके साथ सब कुछ शेयर करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, सब चीज, सुबह से लेकर रात तक हमारी इच्छा रहती है कि मेरा वो दोस्त मेरे साथ साथ रहे। तो क्या ऐसे ही सुबह से लेकर रात तक अपनी हर एक्टिविटी में हम उन्हें भी अनुभव कर सकते हैं, साथ ले सकते हैं, और यदि हाँ तो कैसे?
यही बात शिव बाबा ने उन दो मुरलियों में स्पष्ट की थी।
जी,
विदेशी भी थे कुछ थोड़े बहुत, कि विदेशी तो दोस्त ही बनाते हैं, और दोस्तों को साथ लेकर हाथ में हाथ डालकर गार्डन में घूमते हैं या सागर के किनारे जाते हैं, वहाँ एंजॉय करते हैं। तो तुम भी शिव बाबा जो निराकार है, अब देखिए यहाँ प्रश्न ये भी होता है कि वो है निराकार और दोस्ती कर रहे हैं हम मनुष्य साकार, तो कहीं ना कहीं दोनों को कुछ कुछ चेंजेस चाहिए। तो वो आएगा निराकार अव्यक्त ब्रह्मा के रूप में, और हमें इस साकार को भूलकर हमें भी अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप को धारण करना पड़ेगा। इसकी प्रैक्टिस करने की, थोड़ी मेहनत करने की अवश्य आवश्यकता, ताकि दोनों में समानता हो जाए, दोनों के स्वरूप में भी समानता। बाबा कहा करते थे, एक बहुत मोटा पति पत्नी की बात, एक बहुत मोटी, दूसरा बहुत लंबा,
जोड़ी ठीक ठीक नहीं बनेगी,
जोड़ी ठीक नहीं बनती। तो शिव बाबा भी निराकार अव्यक्त रूप में आ जाए
जी।
और हम साकार को भूल कर अव्यक्त स्वरूप धारण कर लें, तो दोनों में समानता हो जाएगी। तो इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हमने की, और फिर यही बाबा ने सिखाया कि घूमने जाओ तो खुदा दोस्त का आह्वान कर लो, ब्रह्मा तन में सवार होकर सूक्ष्म रूप से अब मेरे साथ आ जाओ
जी।
उसकी उपस्थिति फील करो और उससे बात करते रहो, भोजन करो आ जाओ, पहले तुम स्वीकार करो, उसको बुला लें और उसको भोजन स्वीकार कराएं और पूछें टेस्टी लगा, अच्छा लगा, या ऐसे ही बस अभोक्ता हो तो बस खुशबू लेके ही छोड़ दिया। आनंद लें उससे, लो एक तुम खाओ फिर एक मैं खाता हूँ, मैं तुम्हें खिलाता हूँ तुम मुझे खिलाओ, आनंद लें इस तरह। खुदा दोस्त के साथ बाइक पर जाते हैं, अपने दोस्त का आह्वान कर लो, मैं चलाऊंगा तुम पीछे बैठो, या तुम भी मेरे हाथ में अपने हाथ समा दो, तुम चलाना, तुम तो ऑलमाइटी हो, हमारी यात्रा निर्विघ्न रहेगी, बिल्कुल सेफली हम पहुंच जाएंगे अपने लक्ष्य तक
जी।
आ जाओ बैठा लो उसको। ऑफिस में काम कर रहे कोई कठिनाई आ गई, जैसे हम कठिनाई पर फोन करेंगे किसी को, उसको फोन करो, खुदा दोस्त आ जाओ, जरा ये कठिनाई हो गई, बताओ हल इसका चाहिए, अभी ये उलझ गए हम, यहाँ से हमें निकलना है, जल्दी बताओ मदद करो। कहीं मुसीबत में फंस गए, मान लो अकेले हो गए, रात है अंधेरी, गाड़ी खराब हो गई है, अकेले वहां खड़े हैं, खुदा दोस्त को बुलाओ, आ जाओ कर दो कुछ, वो आप ही मार्ग बना देगा। इस तरह हर कर्म में हम उसका आह्वान कर लें, पर ये दोस्ती गहरी कर दें, उससे इतने घुल मिल जाए कि हर बात उसके साथ, हर राय उससे लेनी है, कहीं समस्या आ गई तो उसको बुलाना है, ये नहीं समस्याओं में मनुष्यों को याद कर रहे हैं और जब किसी से कुछ नहीं हुआ तो उसे याद कर रहे हैं।
स्वार्थ वाली याद हो गई और कोई काम नहीं आ रहा है।
बीमारियों में मुझे इसके बहुत सुंदर अनुभव हुए, क्योंकि हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी और न कोई डॉक्टर था, न दवाइयाँ होती थी, न इंजेक्शन, और न यज्ञ में इतना पैसा था कि हम कहीं बाहर जाएं, अहमदाबाद जाएं या और कहीं जाएं। तो मैं तो अपने खुदा दोस्त को कहता था और उसके बहुत सुंदर अनुभव मुझे प्राप्त हुए, मैंने पहले भी सुनाए हैं, फिर भी एक सुना देता हूँ। 18 दिन हो गए मुझे बुखार चल रहा था, बाबा आने वाले थे तो मैं भी थोड़े आधे मन से दूर जाके बैठ गया, हॉल में बहुत लोग थे, मुझे ख्याल नहीं था कि इतने लोग बैठे हैं तो बाबा मुझे भी देखेगा, और मैं दूर भी था, लेकिन अचानक जैसे मेरी चेतना जगी और मैंने जो बाबा की ओर देखा तो देखा बाबा दृष्टि दे रहे हैं, और मैं अलर्ट हुआ और मैंने एकाग्रता के साथ वो दृष्टि ली, क्योंकि मुझे बुखार था तो तन भी ढीला था
जी।
फिर भी मुझसे कमरे में रुका नहीं गया, जैसे कोई खींच के ले आया मुझे, और बाबा की दृष्टि मिलने लगी, और बस आधा मिनट मिली होगी और बुखार गायब। ऐसे बीमारियों में अनेक तरह के अनुभव
जी,
कमर
जी।
दर्द मुझे हुई, हंसी की बात भी है, मैंने चेकअप कराया तो आया कि 8 जगह कमर में तुम्हें डिफेक्ट है, डॉक्टर हैरान तुम चलते कैसे हो, मैंने कहा मेरा चलना क्या, मैं तो आनंद पूर्वक
दौड़ता
हूँ, मेरे को तो कोई समस्या नहीं। फिर मुझे ख्याल आया कि ये सुप्रीम फ्रेंड जैसे बैकबोन बनकर कमर में भी समाया हुआ है और वो सब कुछ कर रहा है
जी।
बहुत सारी चीजों में इस तरह सीधी अवेयरनेस, मुझे कहीं क्लास कराना हो, मैं कैसे कैसे यूज करता हूँ, क्लास कराना हो, खुदा दोस्त का आह्वान आ जाओ
जी।
कहीं कहीं तो मैं क्लास कराता हूँ तो हंसी की बात ये कि मुझे ये भी ख्याल नहीं होता कि पहली लाइन क्या बोलनी है, टॉपिक एक दे दिया गया है, मुझे ख्याल ही नहीं कि मुझे कुछ सोच भी लेना है, और जब रिकॉर्ड पूरा हो जाता है और क्लास शुरू होती तब मैं सोचता हूँ अरे कुछ बोलना तो है, अब क्या कहाँ से शुरू करूँ, तो खुदा दोस्त का तुरंत आह्वान किया आ जाओ, इट टेक्स 5 सेकंड 1 सेकंड, और फिर बहुत अच्छा हो जाता है। मुझे कुछ लिखना है, मन में उस तरह का फ्लो नहीं आ रहा है, खुदा दोस्त का आह्वान किया और उसी तरह का फ्लो आने लगा। तो बाबा को सचमुच अगर हम अपना मित्र बना लेते हैं तो बहुत ही अच्छे अच्छे अनुभव हमें होते रहते हैं।
जी जी, तो ये बड़े सुंदर अनुभव है दादा जी।
मुझे
जी 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 प्लीज प्लीज आपके अनुभवों से आनंद आ रहा है हमें,
सुंदर याद आ रहा है।
जी जी,
ऐसे तो क्योंकि हम किचन में सेवारत थे तो एक बार हम लोगों ने सिंधी कढ़ी बनाई।
जी,
वो जिसको हमने बनाने को दी थी वो बेसन था मिल से पिसा हुआ, वो थोड़ा चिकना होता है, मैदा जैसा हो जाता है, वो नीचे बैठ गया और वो ऊपर ऊपर चलाता रहा उसको और वो जला दी। जल गई तो काली हो गई, अभी बदबू हो गई उसमें। हमने जब देखा, मुझे बुलाया कि भाई टेस्ट करो कैसा टेस्ट है इसका, तो देखा तो बदबू एकदम, उसको तो देखा ना सूंघा ना जाए एकदम लगे। और अच्छा ब्रह्मा भोजन का प्रोग्राम था
जी।
अभी हम पांच थे तब किचन में, हम पांचों ने योग अभ्यास किया 15 मिनट और अपने खुदा दोस्त को कहा कि देखिए आज इज्जत का भी सवाल है, क्योंकि दादियां सब बड़ी बहनें बड़े भाई साथ बैठकर 900 भाई बहनों के साथ भोजन ग्रहण करेंगे
जी।
बिल्कुल अगर बदबू आती है तो अच्छा नहीं लगेगा किसी को भी, तो आप हमारे इस योग की सुगंध इस कढ़ी में भर दो। हमने अपने खुदा दोस्त को ऐसे कहा
जी।
और 15 मिनट बहुत अच्छा पावरफुल योग अभ्यास किया वहीं बैठकर। और फिर हम तो चले गए, मुझे डर भी लग रहा कि पता नहीं क्या होगा। दादी जी आई और हमारी बोली दादी इंचार्ज होती थी, दादी ने पूछा दादी कढ़ी ठीक बनी, क्योंकि हम कह के गए थे कि भाई पूछ लेना। दादी ने कहा बहुत अच्छी थी कढ़ी तो किसी ने नहीं कहा, और जब मैंने खाई तो मुझे वही बदबू थी। मैं प्रभु जी को धन्यवाद दे रहा था कि आपकी सचमुच महिमा का अपरंपार है, उस गति को कोई जान नहीं सकता कि कढ़ी में इतनी बदबू है, लेकिन सबके नाक बंद कर दिए तुमने।
तो जैसे कई बार शास्त्रों में दिखाते हैं कि अक्षत पात्र वाली बात आती है कि द्रौपदी के पास कुछ है नहीं और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं तुम खिलाओ।
जो ऑलमाइटी है, हम सबके परम पिता है, वो उसके पास, ही इज ऑल पावरफुल, सब
जी,
कुछ उसके पास है, वो चाहे तो सेकंड में सब कुछ बदल सकता है।
बिल्कुल, इसीलिए हम भी उनसे दोस्ती करना चाहेंगे ब्राता जी। लेकिन 3-4 चीजें जो मेरे अभी जेहन में चल रही हैं वो मैं जरूर पूछना चाहूंगा। पहली बात तो ये, आपने कहा आप कोई तैयारी नहीं करते हैं, मंच पे चले जाते हैं, आपको जो भी भाषण करना होता है आप खुदा दोस्त को बुला लेते हैं। अब कोई व्यक्ति बिना तैयारी के कहीं जाए और ऐसे ही बुला ले तो मन में एक दुविधा वाली स्थिति तो रहती है कि भाई पता नहीं वो आएगा भी कि नहीं आएगा, कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए।
मुझे बाबा से पहले ही बहुत सुंदर मनन का वरदान मिल चुका है
जी।
वरदाता से मैंने पहले भी अनुभव में ये बात सुना दी है, मनन चिंतन का एक श्रेष्ठ वरदान मिल गया था ज्ञान से, तो मेरे को तो वो वरदान कार्य करता है कि जैसे मैं बैठता हूँ एक सुंदर फ्लो मन में प्रारंभ हो जाता है
जी।
वो एक अलग चीज है, लेकिन एक आम व्यक्ति जो भी साधक है उसे थोड़ी तैयारी कर लेनी चाहिए और फिर खुदा दोस्त का आह्वान करना चाहिए, तो उसको लगेगा उसके बोल में सुप्रीम पावर आ गई है, जो उसने विचार किया है उसमें और सुंदर विचार जुड़ गए हैं। ऐसे करना,
तैयारी कर लेते हैं कि मुझे भाषण में इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये करना है, या हमने पूरी पीपीटी ही तैयार कर ली है कि फर्स्ट स्लाइड से लेके लास्ट स्लाइड तक हमें ये बोलना है, तो हमने भगवान के लिए तो जगह ही नहीं छोड़ी। यदि वो हमारे थ्रू कुछ कराना चाहते हैं, यदि हमारे थ्रू कुछ बोलना चाहते हैं, तब तो हमने उन्हें कोई मार्जिन ही नहीं दी।
मेरा अनुभव इसमें दूसरा होता है
जी।
मान लो मैंने, मुझे कोई बहुत अच्छा प्रोग्राम देना और मैंने 5 पॉइंट लिख ली उसके लिए, वो मैं 1 मिनट में लिख लेता हूँ भाई इन पॉइंट्स पे मुझे बोलना है। अगर बाबा को मेरे द्वारा कुछ करना है तो वो पांचों मुझे भूल जाएंगी और फिर वही होगा जो वो चाहता है। फिर मुझे ख्याल आता है कि ये तो सुप्रीम इच्छा थी कि उसको ये बुलवाना था और मैंने ये सोचा था तो उसने ये कैंसिल कर दिया और ये बुलवा दिया।
तो ये स्थिति कैसे आए हम सबकी? मैं समझता हूँ कि हर एक साधक की भी ये इच्छा होगी कि हमारे साथ भी ऐसा हो।
देखिए, इसके लिए वही जो कल हम चर्चा कर रहे थे संघ की
जी,
कि अगर हमें एक से सब कुछ लेना है और हम अपने माइंड में, अपने ब्रेन में पूरी तरह से कन्विंस हैं कि उससे दोस्ती करने के बाद और किसी की दोस्ती की जरूरत नहीं है। एक ये है कि दोस्त तो चाहिए भाई, हमें उससे भी दोस्ती हो और औरों से भी हो, नीचे वाले नीचे काम आएंगे, ऊपर वाला ऊपर काम आएगा। लेकिन एक हमने अपने को कन्विंस कर दिया कि नो, ही इज एवरीथिंग, बस उसकी दोस्ती हो गई, फिर हमें किसी की जरूरत नहीं। इसमें हम सुनने के लिए भी तैयार, लोग कमेंट्स करेंगे, लोग हमें अकेला छोड़ देंगे, लोग मदद नहीं करेंगे कि ले लो अपने बाबा से मदद, हम तो नहीं तुम्हें खाना पहुंचाते हैं, करो तुम उससे ही। अनेक तरह की बातें भी हमारे सामने आएंगी, शास्त्रों में भी हैं ऐसी कहानियां, परीक्षाएं होती हैं। लेकिन परीक्षाओं में हम दृढ़ रहें, अपने उस अटल निश्चय से जरा भी डगमगाएं नहीं, और फिर बहुत अच्छा योग अभ्यास करें, अपनी धारणाओं पर पूरा ध्यान दें, यानी पूरा समर्पित कर दें अपने को, अपनी इच्छाओं को समर्पित, अपने संकल्पों को समर्पित, अपनी बुद्धि के अहम को समर्पित, अपनी सब फीलिंग्स को समर्पित, एक ही एक।
पता जी, हम एक सामाजिक प्राणी हैं, जैसे हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, यहाँ भी लोगों के साथ हमें मिलना जुलना तो पड़ता ही है, और हम ये भी कहते हैं कि हमें उनका भी तो भला करना है, उनका भी तो कल्याण करना है, मुझे अकेले ही तो मुक्ति प्राप्त नहीं करनी है, उन सबको भी तो मुक्ति की राह दिखानी है, तो ऐसे में उनसे कट ऑफ हो जाना, ये भी क्या उचित लगता है?
बिल्कुल ये कट ऑफ होने की बात नहीं है, यद्यपि प्रतीत ऐसा होता है कि हम बिल्कुल अलग हो गए, लेकिन इसमें शिव बाबा ने हमें न्यारा और प्यारा, लविंग एंड डिटैच, लवफुल एंड लवफुल, इन सब का एक सुंदर बैलेंस सिखाया है कि हम सबसे मिलते हुए, अपने कर्तव्यों को पूर्ण करते हुए, उन्हें प्यार देते हुए, जब चाहे सेकंड में डिटैच होकर ऊपर जुट जाएं, तो ये स्थिति बहुत अच्छे अभ्यास के बाद ही प्राप्त होती है। इसमें हमें बहुत अच्छी साधनाएं करनी पड़ेंगी, तब हम यहाँ नीचे वालों से भी अच्छा तरह निभा सकेंगे और सुप्रीम से भी अपनी दोस्ती परफेक्टली जोड़ कर रख सकेंगे।
बिल्कुल, मतलब दोनों का एक प्रकार से बैलेंस हो जाएगा, यदि हम उनसे जुड़ जाते हैं तो यहाँ पे भी हम अपनी अच्छी सेवाएं या अच्छा जो व्यवहार है वो लोगों को दे पाएंगे। दो तीन चीजें और विशेष हैं भ्राता जी, लेकिन एक ही विशेष चीज मैं जानना चाहूंगा, कल के लिए भी हम कुछ छोड़ेंगे। आपने कहा कि परमात्मा का आह्वान भी कर लें, और कभी आपने कहा कि आप फोन भी कर लें, तो हम अपने दर्शकों के लिए उनका फोन नंबर जानना चाहेंगे।
देखिए, उनके पास ये मोबाइल तो चलेगा नहीं, लेकिन हंसी में हम कह देते हैं उनका नंबर 0 है, क्योंकि वो स्वयं ही पॉइंट ऑफ एनर्जी है, 0 है, बिंदु है।
जी,
बस उससे अपनी बुद्धि का ध्यान एकाग्र करें और उसका आह्वान कर लें बहुत प्यार से। और ये सत्य है कि यदि हम उससे बहुत प्यार करते हैं, यदि वो हमारा है और हम उसके हैं, इस फीलिंग्स में हम ओतप्रोत हैं, समा गए हैं, तो हमारे बुलाते वो दौड़ा चला आएगा।
बिल्कुल, विकट परिस्थिति आ जाए तब विशेष कैसे बुलाया जाए, एक बात ये जो मेरे जेहन में अभी आ रही है, और दूसरी बात ये कि कई बार जैसे आपने कहा कि हम बीमारियों के समय भी उन्हें याद करें, तो बीमारियों में उन्हें याद करना और दवाइयां लेना, इन दोनों की स्थितियों में स्पष्टीकरण जरूर हमें चाहिएगा कि कैसे, क्योंकि कई लोग ऐसा सोचेंगे कि हमें दवाइयां नहीं लेनी है, हमें बस उस भगवान की ही मदद लेनी है, तो शायद यहाँ भी स्पष्टीकरण की जरूरत है। कल मैं चाहूंगा कि इन दोनों बातों को आप स्पष्ट करें, आज के सुंदर अनुभव के लिए जिसने हमारे सभी दर्शकों को भाव विभोर कर दिया होगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, वास्तव में अनुभूतियां कितनी गहन होती है ना, और यदि भगवान के साथ जुड़ जाते हैं, उनके साथ का अनुभव करने लगते हैं, तब तो चेहरा खिल जाता है, जीवन खिल जाता है, जीवन बदल जाता है। और जैसे शुरुआत भी मैंने की थी कि जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान, तो सचमुच जीवन में कितनी सरलता, कितनी सहजता आ जाती है। आप देखते होंगे भ्राता जी के चेहरे को, देखते होंगे या पीस ऑफ माइंड चैनल में जितने भी वरिष्ठ राजयोगी भाई बहने आते हैं, कितनी सरलता से, कितनी सहजता से आध्यात्मिक गूढ़ बातों को हमारे सामने रख देते हैं, तो ऐसा लगता है कि अरे ये इतनी सहज हैं क्या, और जब इनके जीवन में है, हमारे जीवन में क्यों नहीं आ सकता। हम सब का भी परमात्मा पे अधिकार है, परमात्मा के ज्ञान पे अधिकार है, उनकी शक्तियों पे अधिकार है, क्यों ना हम भी एक कदम परमात्मा की ओर बढ़ाएं, उनसे मित्रता कर लें और अपने जीवन को खुशहाल बना लें। कल पुनः बने रहिएगा संग पे, परमात्मा की इन साथ पे, जो दो प्रश्न मैं छोड़े जा रहा हूँ उन पे हम चर्चा करेंगे भ्राता जी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और कल ठीक 7:30 बजे पुनः हमारे साथ रहिएगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।